नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियमों का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना और नियमों की संख्या कम करके कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के अंतर्गत कंपनियों को लाभांश का भुगतान केवल देश के भीतर ही करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 2025 पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 की शुरुआत की। ये अभियान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया के अंतर्गत चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम होगी। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और व्यक्तियों या संगठनों को भी अपने विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा। ये नियम टेलीविजन, रेडियो, सार्वजनिक प्रदर्शन स्क्रीन, ई पेपर, SMS, वॉइस मैसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर लागू होगा। राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 75 दिन के भीतर सोशल मीडिया सहित इंटरनेट के माध्यम से प्रचार पर किए गए खर्च का विवरण भी निर्वाचन आयोग को देना होगा। शिक्षा मंत्रालय आज से मुंबई में भारत इनोवेट्स डीप टेक फ्री समिट का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत को डीप टेक नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सम्मेलन में विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में देश भर से प्राप्त 3,000 से अधिक आवेदनों में से चुने गए लगभग 137 डीप टेक स्टार्टअप भाग लेंगे। अमेरिका, इसराइल और ईरान संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर ताजा सैन्य हमले और जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जिससे ईद उल फित्र और नवरोज के जश्न पर भी असर पड़ा है। अमेरिकी प्रशासन ने बताया है कि वो समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों में 1 महीने की छूट देगा, ताकि बढ़ती तेल कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। ये छूट कल तक जहाजों पर लदे ईरानी तेल पर लागू होगी और अगले महीने की 19 तारीख तक प्रभावी रहेगी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के साथ युद्ध विराम की संभावना से इंकार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी अभियान का साथ न देने पर नाटो सहयोगियों की आलोचना भी की है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने देश भर में आक्रामक विदेशी प्रजातियों से उत्पन्न पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक जोखिमों से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ये निर्णय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की कार्यवाही के बाद लिया गया है। देश भर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने के बाद आने वाला यह त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है।
समूचे देश में आज सुबह से ही ईद की रौनक दिखाई दे रही है। मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर अमन, शांति और खुशहाली की दुआ कर रहे हैं। इधर दिल्ली में जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की जा रही है। ईद उल फित्र रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है। इसमें मुसलमान रोजा रखकर आत्म संयम और इबादत करते हैं। एक दिन पहले चांद दिखने के बाद ईद की शुरुआत होती है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं।
ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज फ्रांस में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। तन्वी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के नात्सुकी नेदेरा को हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की ईशारानी बरुआ का सामना आज रात थाईलैंड के पेचामोन ऑप्टिनपुत से होगा। भारत के अर्जुन मदाथिल, रामचंद्रन और हरिहरन अस्माकरुण की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।